मुश्किल अल्फाज की वजाहत, ये 51 आयत में फतरनी है ना, तो क्या मानी है इसके? एक खलका के माने भी पैदा करने हैं और फतरा के माने भी पैदा करने, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, खलका है कि ऐसे ही जैसे कोई चीज है और बनाई है, लेकिन फतरा तराश खराश के खूबसूरत बनाना, फातिर, सूरत फातिर भी है ना। इस्तग़फिरू क्या रूट वर्ड है? गैन फारा क्या मानी है? बख्शिश मांगना। फिर है मिदरारा, दाल रारा और मिदरारा, ये किसे कहते हैं? हाँ, बारिश के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और बारिश के लिए कुरान में कई अल्फाज आए हैं। आप उनमें से कोई बताएं, कौन सा मसलन? शाबाश, मतारा और अच्छा, जैसे देखें 9 लफ्ज आए हैं, इसमें एक तो मतर है, आम बारिश के लिए फायदामंद है या नुकसानदेह है, हर तरह की बारिश के लिए है मतर, और याद रखें ये इसमें जिन्स है। दूसरा है मा, ये वैसे तो इसके मानी पानी के हैं, लेकिन मजाजन बारिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये दूसरा दूसरी नंबर की बारिश है। तीसरा लफ्ज है तल, तोए लाम लाम तल, फ इलम युसिबा वाबिलुन फतल, तो तोए लाम लाम जो है ना, फतल जो है ना, असल में फा अलग है, तो तोए लाम लाम जो है इसके मानी क्या है? फवार, हल्की कमजोर बारिश, शबनम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीसरा दर्जा की बारिश है। चौथे दर्जे की वदक है, वाउ दाल काफ, ये लगातार होती है और ऐसी बारिश अमूमन आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर तक जारी रहती है, ये भी आप पढ़ेंगे। फिर है नंबर 5 गईस, और ये वो बारिश होती है गैन या सा, जो जरूरत के वक्त हो और जरूरत के मुताबिक हो, जैसे खेती को कितनी बारिश चाहिए जो किसानों को अच्छी लगती है, तो होता है ना कभी ज्यादा चाहिए कभी थोड़ी चाहिए, तो मुनासिब वक्त पर हसबे जरूरत बारिश। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मिदरारा, मिदरार दर दाल रारा, दूध और दूध की फरावानी को भी कहते हैं, दरूर बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी को कहते हैं, इसी से मिदरारन लफ्ज ले लिया गया। ऐनुम मिदरारुन, बहुत आंसू बहाने वाली आंख, और मिदरार के मानी बहुत बरसने वाली बारिश भी, तो मिदरार वो बारिश जिसमें पानी की फरावानी हो। ठीक है, तो ये कहां से लिया ये लफ्ज? जो बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी है ना, उसको कहते हैं ना दरूर, तो उसी से मिदरारन मुश्तक है। फिर सातवां लफ्ज है गदक, गैन दाल कौफ, ये वो बारिश है पानी की फरावानी भी हो और सूदमंद भी हो, जैसे सब्जा उगाने का जो बायस बन जाए फायदा, सूदमंद से मुराद ये है, जैसे शीरी चश्मा है, गदा का तो उसको भी कहा जाता है। तो ऐसी बारिश को भी जो सरसब्जगी का जरिया बन जाए, गैन दाल कौफ। आठवां है सैयद, कब पढ़ा था आपने? शाबाश, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, है ना, सूरत अल बकरा आयत नंबर 19 में आप इसको पढ़ चुकी हैं। तो इसी तरह नामी जो बारिश का है वो है वाबिल। तो सैयब आपको पता है ना, जोरदार बारिश जिसमें बादल भी खूब गरज रहे हो, बिजली भी चमक रही हो। आप ऐसे कर सकती हैं, जैसे मुख्तसिर कैसे लिखेंगी? बारिश प्लस बादल प्लस बिजली, है ना, तो आप खुद अपने हिंट ऐसे लिखें कि आपको लिखना भी आए और फिर याद करना भी। फिर नवा है वाबिल, वो बालाम, लाठी से लगातार मारना, किसी चीज में शिद्दत और कसरत के मानी देता है, इसी से वाबिल شدید قسم کی بارش کو بھی کہتے ہیں، ایسی بارش جو کثرت سے ہو، شدت اور تیزی سے کہ خس و خاشاک تک بہا کر لے جائے، اور یہ بارش کا آخری درجہ ہے. اور آپ یہ پڑھ چکی ہیں سورۃ البقرہ میں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. ہاں، تو یعنی ایسی زور کی بارش ہوئی کہ اس کو بالکل سلدہ بنا دیا، صاف چٹیل بنا کر رکھ دیا. تو بہرحال یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، لیکن پھر سے بتانے کا مقصد کہ کوئی دن تو آئے گا نا جس دن ہمیں چیزیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہے بتارکی، آیت نمبر 53 میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ تارکیف، ترک کرنا، اور تارکی ہم نہیں چھوڑنے والے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا. پھر ہے آلیہتنا، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ حمزہ لام ہا، الف لام ہا. اچھا، پھر اس کے بعد ہے آیت 54 میں اے طرح کا، اس کا روٹ ورڈ عین را یا بھی اور عین را واو بھی، معنی ہے ننگا ہونا، کسی کے کپڑے اتار کر اسے ننگا کر دینا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہے کوئی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کپڑا اتار کر ننگا کر دیا، ہے نا. تو اسی سے جب کوئی ننگا ہے، کسی کو ننگا جب کر دیا جائے تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا. تو اسی سے یہ لفظ جو ہے اسیب زدہ، کسی کو اسیب زدہ کر دینا، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ایک معنی پہنچنے اور لاحق ہونے کے بھی ہیں. اے طرح کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف قصد کرنا، اس پر چھا جانا، ہے نا. تو اب آپ مثلا آپ دیکھیں کسی نے کپڑے پہنے، اس کو پکڑا جائے، اس کے کپڑے اتار دیے جائیں، تو کسی پر پہنچ گئے، اس پر چھا گئے، جیسے اس کو پھر اسیب زدہ بنا دیا. تو اسیب زدہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اس کی ایسی اس کی حالت کر دی کہ گویا کہ اس کو کسی نے چھو دیا ہے یا کسی نے اس کو ٹچ کر لیا ہے، یعنی گویا کہ وہ صحیح کیفیت میں نہیں ہے. اسیب پہنچانا، اصل میں یہاں پہ اے طرح کا، اسیب پہنچایا تجھ کو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسیب زدہ ہے. اسیب پہنچایا تجھ کو، ہے نا، تو ترجمے میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو جائے گا. یوں کہنا چاہیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے، اس کے اوپر مشکل دن آ گئے ہیں جی، اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، اس کے گھر بیماری آ گئی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اسیب زدہ ہو گیا ہے نا، ہمارے معبودوں کی اس پر مار پڑ گئی ہے، اس طرح کے معنی میں. سمجھ آئی کہ کسی پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہی آنی شروع ہو جائیں. تو اس طرح یہ مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. کہ مثلا یہاں پر جو ہے اے طرح کا بادو آلیہتنا بسو، کہ برائی کے ساتھ ہمارے بعض خدا تجھ پر چھا گئے ہیں، تجھ تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے معبود برائی کے ساتھ تجھ پر چھو گئے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے ہمارے معبودوں کی چونکہ گستاخی کی ہے، تو اسی لیے اب تم ذلیل ہو رہے ہو، تمہارے پر پتھر پڑ رہے ہیں، تم پر گالیاں پڑ رہی ہیں، تمہیں لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ تو اسیب زدہ ہو گیا. سمجھ آئی بات کی؟ یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بچوں کو جن کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بلی، ہے نا. تو ایسے کسی کو بنا دینا. تو بہرحال آگے ہے بناسیتہا، کیا روٹ ورڈ ہے؟ بناسیتہا، روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ نون سوادیا. پھر ہے صراط، کیا روٹ ورڈ ہے؟ سواد رات. تو ایک کون سے راستے کو کہتے ہیں؟ سیدھا اور ایسا راستہ جو باریک ہو تلوار کی طرح، نوکیلا بھی ہو اور باریک ہو تلوار کی طرح، یعنی مشکل راستہ نا، اسی لیے پل سے رات. سبیل ہوتا ہے سیدھا راستہ، کھلا کشادہ، جس پر آرام سے چل سکے. پھر ہے آیت نمبر 59، جیم ہا دال واو الف، جہدو، کیا ہے روٹ ورڈ اس کا؟ جیم ہا دال، انکار کرنا. پھر ہے آیت نمبر 61 میں وستا مرکم، عین نیم را، रूट वर्ड है, इसके माने क्या है? आबाद करना। हम कहते हैं ना उसकी उम्र इतनी है, तो इसका मतलब है उतनी देर तक रूह ने उसके जिस्म के मकान को आबाद रखा। आगे है आयत नंबर 62 में मरजुअन, इसका रूट वर्ड है राजीम वाओ या राजीम अलिफ। तो इसके माने क्या है कि उम्मीद, किनारा, ऐसी चीज जिसके हासिल होने की एक उम्मीद हो और जिसमें खुशी भी शामिल हो, है ना, एक रिजा। तो अब चूंकि सवाले अलैहिस्सलाम जो थे वो उन अपनी कौम के दरमियान बड़े ही अच्छे इंसान थे, आपका इखलाक, किरदार, जवानी, सारी बातें, तो चूंकि जब उठान अच्छी, परवरिश और तरबियत अच्छी, तो कौम और कबीले की उम्मीदों और आरजुओं का आप मरकज थे। समझ आई? मरजुआन मरकजे उम्मीद होता है ना, खानदान में एक फर्द होता है तो पूरे खानदान का वो उम्मीद का मरकज होता है, तो कौम के अंदर जो होता है तो वो कौम की उम्मीद का मरकज होता है। समझ आ गई मरजुआन का? अच्छा, फिर उसके बाद है तजी दू ननी, आई 63 में क्या रूट वर्ड है? क्या रूट वर्ड है? जे यादाल, है ना, ज्यादा, बढ़ाना। तकसीर 63 आयत के आखिर में है, क्या रूट वर्ड है? खासीन रा। अच्छा, फिर आप देखिए कि वया कौमी, या कौमी जो है इसका, इसके अंदर मीम के बाद या भी है ना, तो या कौमी, ए मेरी कौम। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें या नजर नहीं आती ना, तो अगर मेरी का तर्जमा कहीं हो तो परेशानी होती है कि ये कहां से आ गया। तो बात क्या है कि ए मेरी कौम। फिर इसके बाद है नाका। नाका जो है ये किसे कहते हैं? ऊंटनी को कहते हैं। और आपको कुछ याद है कि और ऊंट के लिए क्या अल्फाज जो है वो, एक 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 करके, एक जमल है, शाबाश, जमल है वैलल, हाँ, वैलल इबिली कैफा खुलिकत, है ना। तो एक और इबिल है और जमल है, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नाका। आपने वैसे और भी पढ़े हुए हैं, आपको इस वक्त अगर नहीं याद तो आप देख लीजिए। ऊंट के लिए जो कुरान में लफ्ज मिले हैं ये 13 हैं। 100 या 200 थोड़ी का है, सिर्फ 13 ही तो बताए। एक है इबिल, इबिल इस्म जिन्स है, हर किस्म के ऊंट, नर और मादा के लिए इस्तेमाल में आता है, इसका तस्निया और जमा नहीं आता। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, सूरत गाशिया। दूसरा है बईर, हाँ ये सूरत यूसुफ में आप पढ़ेंगी, ये इस जिन्स है, नर और मादा सब पर इसका इस्तेमाल होता है, और जब ऊंट 4 साल का हो जाता है ना, जब जिससे वजन लादा जाए, बार बरदारी के काबिल हो जाए, तो बईर होता है, यानी बईर। अब आप खुद ही समझेंगे, जब वो बईर कहेंगे तो 4 साल का हो चुका है, अब उस पर सामान लादा जा सकता है, नौजवान और ताकतवर ऊंट को कहते हैं। और सूरत यूसुफ में आता है, कालू नफ्किदु सुआ अल मलिकी वले मन जा अहिमलु बईरिन व अना बिही ज़ईम, है ना। समझ आ गई कि वो ऊंट जिस पर सामान लादा जाएगा, वो ऊंट के ऊपर सामान लाद कर हम उसको इनाम के तौर पर देंगे जो बादशाह का प्याला हमें बता दे। तो आप देख ले कितना लुत्फ आता है कि यहाँ पे बईर से मुराद वो ऊंट है जवान, ताकतवर, जिस पर सामान लादा जाएगा, तो इतना बड़ा इनाम उन्होंने मुकर्रर किया था। और फिर तीसरा है जमल, ये 5 साल से जायद उम्र का नर ऊंट होता है, खूबसूरत ऊंट को कहते हैं, इसकी जमा जिमालतुन भी आती है। तो आप जमल जमील से याद रखें, खूबसूरती वाला, है ना। फिर है हीम, हा या मीम हीम, और हीम जो है ये दो मानी में इस्तेमाल किया जाता है, आशिकाना और मजनूनाना कैफियत से आवारा फिरना। आशिक की क्या कैफियत होती है? पागलों दीवानों वाली ना, इधर उधर मारा मारा फिरना, मट्टी है, बाल बिखरे हैं, है ना। तो आशिकाना मजनूनाना कैफियत से आवारा फिरने वाले को हीम कहते हैं। नंबर दो, सख्त प्यासा होना। और कहते हैं कि ये हयाम एक ऐसी बीमारी है जो ऊंटों को लगती है कि इतनी प्यास उनको लगती है कि वो सैर ही नहीं होते ना। और हीम ऐसे ऊंट को कहते हैं जो सख्त प्यासा होता है ना। इसी तरह जो आशिक दीवाने होते हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आती ना, कोई चीज उनको सैर नहीं करती, कोई बात समझ में नहीं आती। ये पिछले दिनों का वाकया है, एक औरत जो थी वो उसकी उसका बेटा, और बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही समझदार, और उसने किसी मतलब स्टैनिश और जो काफिर थी उस मतलब उससे इश्क, और उसके इश्क में पागल दीवाना, और बहरहाल मुसलमान भी हुई, लेकिन उसके बाद वो मुसलमान नहीं है। और अब वो बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है कि कोई तरीका है कि मैं इससे निजात हासिल कर लूं। तो पहले कोई जुमला, किसी की नसीहत, माँ बाप का रोना, उसके आगे हाथ जोड़ना, दहाइयां देना, कोई तरीका नहीं था, कहती थी कि वो कोई उस पर कारगर होता हो ना, कोई साबित होता हो। तो अब वो कहता है कि कोई ऐसा तरीका है कि मैं जल्दी से इसे जान छुड़ा सकूं। यानी थोड़े ही अरसे में, कुछ अरसे में ही उसको जो है वो हकीकत खुलकर सामने आ गई ना, है ना। तो प्यास बुझती ही नहीं है। तो हीम पांचवा है रिकाब। रिकाब जो है रकाबा सवार होना, और रिकाब किसी सवार के सवार होने के वक्त पांव रखने की जगह को भी कहते हैं, है ना। तो रिकाब भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मसलन, मिन खैलिम वला रिकाब, ना तुमने घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट। फिर छठा है दामिर। हाँ, अब समझ आ गई दामिर की, कि दामिर से मुराद वो ऊंट होता है जो जिसका पेट साथ लगा हुआ हो, हमवार शिकम, बारीक और लतीफ जिस्म वाला। हर वो सवारी, यानी घोड़ा भी हो सकता है, ऊंट भी हो सकता है, जो मेहनत, मुशक्कत, रियाजत की वजह से कमजोर जिस्म वाला हो जाए, या फिर मतलब इतनी मेहनत मुशक्कत करे कि उसका जिस्म कमजोर हो जाए, लेकिन खुराक की कमी की वजह से नहीं, मेहनत और मुशक्कत की वजह से। और मिदमार इस जगह को कहते हैं जहां जानवरों को एक्सरसाइज की मशक कराई जाती है, रियाजत की, मेहनत की। तो दामिर, सुबक रफ्तार घोड़े, ऊंट नर हो या मादा। और इसीलिए वह अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, ए इब्राहिम आप आवाज दीजिए लोगों को हज के लिए, या तू का रिजालन, वो चले आएंगे आदमी, वाला कुल्ले दामिर, और वो हर कमजोर दुबले दुबले पतले ऊंटों पर, या तीन अमिन कुल्ले फज्जिन अमीक, दूर दराज रस्तों से ये तेरे पास फिर चले आएंगे। तो वो जब खाना कावा बन गया था तो आप आवाज दें, और फिर वो लोग तेरी आवाज का जवाब देते हुए दूर दराज से सफर करते हुए, मिन अला कुल्ले दामिर, हर कमजोर, मेहनत कर करके इंसान कमजोर जो हो जाता है। तो अब जैसे हज पर लोग जाते हैं, बाद लोग कहते हैं हमने 8,000 जमा करवाया हज का, $8,000। एक कहने लगी औरत, मैंने 5,000 करवाया। फिर दोनों से बात हुई बाद में, पांच, एक ने 5.5 कराया, एक ने 8,000 कराया। तो एक कहने लगी कि जिसने 8,000 कराया, कहती इतना खाना था कि खा नहीं सकते थे, बड़ी सहूलतें थी, लेकिन फिर भी बीमारी भी है, कमजोरी भी है। और कहती कि हमारे वो जो जिन्होंने 8,000 के करीब दिया, तो कह रही थी कि हमारा जैसे 60-70 जो भी गाड़ियां थी, बसें थी, और 5-स्टार होटल बिल्कुल ही हरम के सामने, तो उसमें से एक बस जो थी वो किसी वजह से खराब हो गई, उसके लोग पूरे जितने भी उसके अंदर मुसाफिर थे वो परेशान रहे ना। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि उनका 8,000 भी उनको जो अल्लाह की तरफ से आई मुसीबत से उससे बचा ना सका, है ना। तो बाज औकात जो हज से आते हैं, बाज लोग तो खाने की वजह से भी कमजोर होते हैं कि मिलता नहीं उस तरह, बाज लोगों के पास खाना पीना बहुत होता है, लेकिन मेहनत मुशक्कत उनको कमजोर कर देती है। और ये जो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की आवाज है, वो इसी आयत का जवाब है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, अज़िन फिन्नासी बिल हज। फिर आप इसके बाद देखिए कि सातवां है बुदन, वो ऊंट या गाय जो मक्का भेजी जाए। वल बुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह, और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह मुकरर कर दिया, यानी अदब की चीज है ना ये। फिर है नाका, नाका जो है इसका रूट वर्ड है नून वाव काफ नौक। उस ऊंटनी को कहते हैं जो जुफ्ती के काबिल हो चुकी हो। या कौमी हाज ही नाकतुल्लाही लकुम आया, और सवाले अलैहिस्सलाम ने कहा ए कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक नाका है, एक निशानी है। फिर है नंबर 9 इशार, ये अशर से है, और ऐसी ऊंटनी को कहते हैं जिसे हामला हुए 10 महीने गुजर चुके हों। वाइजल इशार उत्तिलत, है ना, जब 10 माह की गाबन ऊंटनियां खुली फिर रही होंगी। नंबर 10 बुहेरा, जो मैं कह रही थी ना आप भूल गए, बुहेरा। तो बुहेरा, साहिबा, वसीला और हाम, ये चार हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी, जब सूरत में और आप पढ़ेंगे तो और आप इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये चारों जो हैं, जमाने जाहलियत ने मुख्तलिफ शर्तों के मुताबिक बुतों की नजरों न्याज और कुर्बानी के लिए मखसूस कर दी जाती थी। आयत नंबर 65 है मकजूब, क्या रूट वर्ड है इसका, काफ जालबा, शाबाश, कज़्ब से है। और फिर आयत नंबर है 67, और इसमें है सैहा। सैहा जो है क्या है इसका रूट वर्ड, स्वाद या हाँ हाँ और ये कहते हैं आवाज बुलंद करना, और ऐसी आवाज जिसके अंदर चीख भी हो, है ना, चीखो पुकार। फिर है फास बहू,
स्वाद
स्वाद बहा, बस वो हो गए, बस वो हो गए सुबह के वक्त, जैसे किसी हालत का बदल जाना, हालत का तब्दील हो जाना। फिर इसके बाद है दयारहिम, दयारहिम का रूट वर्ड क्या है, दाल अलिफ रा, दार, घर के लिए है ना, ये किसके लिए है, घर के लिए है। और फिर है जासमीन, जा सा मीम, हाँ जीम सा मीम, और इसके मानी है हाँ उलट देना, जैसे किसी को औंधा ही कर देना। हाँ अच्छा, उसमें आप देखें कि उलट देने के लिए भी यूं तो कुरान में कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो जो जासमीन है फिर ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 7 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है अरकसा, दूसरा एतफक, तीसरा जसामा। जसामा जो है परिंदे का सीने के बल जमीन पर बैठना और फिर इससे चिमट जाना, किनायतन किसी शख्स का सीने के बल जमीन पर लेटना, सीने के बल गिरा देना, चिमटा देना, औंधा किसी को गिरा देना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे है चौथा कब्बा है, पांचवा कब 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 कब, छठा कल्लब, और सातवां नकासा, नुनक्किसु फिल खल्क। तो ये अल्फाज हैं फस बहू फी दियारहिम जासमीन।